नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रशांत कुमार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत में पश्चिम एशिया संघर्ष पर चिंता साझा की। संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत और फिनलैंड ने प्रवासन, गतिशीलता तथा पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते पर हस्ताक्षर किए। पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ा, संघर्ष अजरबैजान तक पहुंचा। ब्रिटेन ने कतर की रक्षा के लिए युद्ध विमान तैनात किए। 11वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में आरंभ। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्सेंडर स्टुब ने कहा, भारत भविष्य की विश्व व्यवस्था तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 254 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति पर अपनी साझा चिंताओं और संवाद तथा कूटनीति से समाधान की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए घनिष्ठ सहयोग और समन्वय जारी रखेंगे। भारत और फिनलैंड के बीच आज नई दिल्ली में पर्यावरण सहयोग, प्रवासन और आवाजाही तथा सांख्यिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्सेंडर स्टुब के साथ कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है।
आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप, दुनिया की दो बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स, अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फिनलैंड कानून के शासन, संवाद और कूटनीति में विश्वास रखते हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते से भारत और फिनलैंड के बीच व्यापार, निवेश तथा तकनीकी सहयोग और मजबूत होगा।
2026 की शुरुआत में ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। ये एग्रीमेंट भारत और फिनलैंड के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी सहयोग को और प्रबल करेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भारत और फिनलैंड महत्वपूर्ण साझेदार हैं।
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि चुनौतियों के बावजूद श्री मोदी भारत में आम लोगों तक कल्याणकारी कार्यक्रम पहुंचाने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। श्री कार्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में वित्तीय सुधारों के माध्यम से करोड़ों लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने में सफलता हासिल की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची से बातचीत की। उन्होंने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र बिन हमद बिन हमूद अल बुसैदी से भी चर्चा की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज थिम्पू में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक से मुलाकात की। उन्होंने भूटान में न्यायिक प्रक्रियाओं के तकनीकी सहयोग और डिजिटलीकरण के लिए व्यापक समर्थन की पेशकश की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए विचारों का आदान प्रदान भी किया। उन्होंने बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए संयुक्त प्रयासों पर चर्चा की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष कई देशों के शामिल होने से और तेजी से फैल गया है। अमेरिका और इसराइल ईरान पर हवाई हमले कर रहे हैं और ईरान मिसाइलों और ड्रोन से जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान समर्थित हिजबुल्ला भी ईरान के साथ हमलों में शामिल हो गया है। क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के लिए इसे खतरा बताते हुए कई देश चिंता व्यक्त करने के साथ स्थिति को शांत करने का आह्वान कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
अज़रबैजान ने आज नखचिवान शहर और हवाई अड्डे पर ईरान के ड्रोन हमले की कड़ी आलोचना की है। इसमें दो नागरिक घायल हो गए। ईरान ने इन हमलों से इनकार किया है। कतर ने भी ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाया। सऊदी अरब ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने कई ड्रोन नष्ट कर दिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कतर में 4 अतिरिक्त लड़ाकू विमानों की तैनाती की घोषणा की है। लंदन में आज श्री स्टार्मर ने कहा कि ये विमान कतर में पहले से तैनात ब्रिटिश बलों में शामिल होंगे, जिससे क्षेत्र में ब्रिटेन की रक्षात्मक स्थिति मजबूत होगी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि ईरान ने इसराइल पर खुर्रम शहर 4 मिसाइल से हमला किया। ईरान ने बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात पर भी हमले के दावे किए। आज सुबह ईरान ने इसराइल और अमरीका पर फिर हमले किए। ईरान का एक अन्य जहाज आयरिस बुशहर इस समय श्रीलंका के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के पास मौजूद है। जहाज ने श्रीलंका के बंदरगाह पर डॉक रुकने की अनुमति मांगी है। श्रीलंका सरकार इस अनुरोध पर विचार कर रही है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 11वें संस्करण का शुभारंभ किया। मुख्य भाषण देते हुए फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्सेंडर स्टूब ने कहा कि विकासशील और अल्प विकसित देश ये तय करेंगे कि भविष्य में विश्व व्यवस्था कैसी होगी और इसमें भारत की अहम भूमिका होगी।
इंडिया एज अ मेजर पावर,
भारत एक प्रमुख शक्ति के रूप में ये तय करने में एक महत्वपूर्ण या शायद सर्वोपरि भूमिका निभाएगा कि क्या दुनिया सौदों, लेन देन और हितों के क्षेत्रों में संघर्षपूर्ण बहुव्यवस्था की ओर जाएगी या दुनिया अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, नियमों, मापदंडों पर आधारित एक नई सहकारी, निष्पक्ष और प्रतिनिधि बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था की ओर जाएगी।
बेस्ड ऑन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, रूल्स एंड नॉर्म्स।
श्री स्तूब ने कहा कि वैश्विक शक्ति संतुलन बदल गया है। विकासशील और अल्प विकसित देशों के पास अर्थव्यवस्था और जनसंख्या दोनों ही मजबूत पक्ष हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी प्रभुत्व वाले विश्व का युग समाप्त हो गया है, लेकिन पश्चिम में इसे पूरी तरह समझने में कुछ समय लगेगा। उन्होंने स्वीकार किया कि आज विश्व राजनीति में कई बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि यदि राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना छोड़ देते हैं तो वर्तमान विश्व व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। नई विश्व व्यवस्था को आकार देने के विषय पर डॉक्टर स्तूब ने कहा कि फिनलैंड की नीति मूल्यों पर आधारित यथार्थवाद पर टिकी है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के एक रचनात्मक सदस्य के रूप में भारत के कार्य करने के तरीके ये स्पष्ट हैं। इस सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अगले कुछ दिनों में हमारी चर्चा नई क्षमताओं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी के बारे में होगी।
Our discussions over the next few days.
अगले कुछ दिन में हमारी चर्चा नई क्षमताओं, सैन्य, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, मानव संसाधन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा प्रौद्योगिकी के बारे में होगी। ये चर्चा दो नए विचारों, जोखिम लेने की बढ़ती प्रवृत्ति और साथ ही जोखिम कम करने तथा विविधीकरण के बढ़ते संकल्प के बारे में भी होगी।
The growing resolve to de-risk and diversify.
सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की सीईओ कृति के करंथ आज लंदन में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। बेंगलुरु निवासी कृति को विश्व के इकोसिस्टम की मानवीय समझ में महत्वपूर्ण योगदान और ग्रह की जैव विविधता के संरक्षण के लिए किए गए कार्यों के लिए ये पुरस्कार दिया गया। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 254 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 253 रन बनाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत में पश्चिम एशिया संघर्ष पर चिंता साझा की। संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत और फिनलैंड ने प्रवासन, गतिशीलता तथा पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते पर हस्ताक्षर किए। पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ा, संघर्ष अज़रबैजान तक पहुंचा। ब्रिटेन ने कतर की रक्षा के लिए युद्ध विमान तैनात किए। 11वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में आरंभ। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्सेंडर स्तूब ने कहा, भारत भविष्य की विश्व व्यवस्था तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 254 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।